हरे कृष्णा। गुड़गांव भक्तवृंद, हम भक्ति शास्त्री के अंतर्गत भक्ति रसामृत सिंधु के तीसरे अध्याय का अध्ययन में समझता हूँ कर रहे हैं। हाँ, तीसरे अध्याय के अंतर्गत हमने भक्ति का अधिकारी कौन है उसके विषय में, जिसमें थोड़ी रुचि है शास्त्र को सुनने के लिए, अधिक आसक्त नहीं है और अधिक विरक्त नहीं है तो भक्ति शुरू कर सकता है, और ये केवल हो सकती है भगवान के भक्तों के संग से, वो उनका है सौभाग्य। फिर उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी भक्ति का इनका वर्णन किया। आज हम आगे इस अध्याय में प्रभुपाद जी की भाषा में है, प्रभुपाद जी की भाषा में है कि अन्य कनिष्ठ अधिकारी कौन है, जो अन्य कनिष्ठ अधिकारी हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। अब वास्तव में वो भक्ति में अभी प्रवेश नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ ये हमारे पुस्तक में आप देखें लिखा है कि कनिष्ठ अथवा जो तीसरे स्तर के अन्य जो भक्त हैं उनका वर्णन भगवद गीता में है। तो ये श्लोक है, आपके स्लाइडों में देखिए, ये श्लोक है, चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। सो हे भर्तृवंशियों में श्रेष्ठ, चार प्रकार के सुकृतिन कौन से, एक आर्तो जो दुखी है, एक जिज्ञासु और एक अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, और एक ज्ञानी, ये मेरा भजन करते हैं। भजती का मतलब भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। तो ये चार जो हैं, इसके लिए हमारे पुस्तक में दो पेज लिखा है, उसका सारांश ये है, क्योंकि ये चारों सुकृत कृष्ण का शरण लेते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये सब उदार हैं। ये कहीं और देवता के पास नहीं गए, ऐसे ही हताश नहीं हुए, कृष्ण के पास गए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। परंतु फिर भी ये चारों के चारों अभी तक वैदी साधन भक्ति के अधिकारी नहीं हैं। ये चारों वैदिक साधक भक्ति के अधिकारी नहीं हैं। उसका कारण ये है कि उनको विश्वास जो है कृष्ण के ऊपर नहीं, परंतु कृष्ण से अपनी कुछ इच्छा पूर्ति करने का है, चाहे दुख निवारण हो या धन और सुख की प्राप्ति हो। उत्तम भक्ति जो है उसमें अन्य अभिलाषा नहीं होती है, कोई भी जो है स्वार्थ अथवा कोई और उद्देश्य नहीं होता, वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। इसलिए चार प्रकार के ये सुकृत जो 7-16 भगवत गीता में है, ये उस स्तर पे नहीं आते हैं जो उत्तम भक्ति का अधिकारी, उत्तम वैदिक भक्ति का अधिकारी के लिए जरूरी है। इसलिए अभी तक वो वैदिक साधन के अधिकारी नहीं है। तो वैदिक उत्तम साधक भक्ति, उसके लिए क्या अधिकार चाहिए? तो पहला नंबर एक, स्पष्ट ज्ञान हो, साफ ज्ञान हो कि हमारा लक्ष्य कृष्ण की शुद्ध भक्ति है, पहला। और दूसरा, श्रद्धा हो उस लक्ष्य में। और तीसरा, बिल्कुल गंभीरता से विवेक पूर्वक निर्णय करे कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। ये तीन चीजें, ये तीन गुण, पहले स्पष्ट ज्ञान अपने लक्ष्य, और क्या है वो लक्ष्य? शुद्ध कृष्ण की भक्ति। दूसरा, उसमें विश्वास, उस लक्ष्य में विश्वास। तीसरा, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए निश्चय और गंभीरता। तो ये चार प्रकार के जो सुकृत हैं, इनमें ये तीनों गुण पूर्ण रूप से साधन वैदि भक्ति के नहीं दिखते हैं। ये उत्तम भक्ति से पहले पूर्व जो कुछ गुण होने चाहे वो तो हैं, परंतु भक्ति शुरू करने के गुण नहीं लग रहे, नहीं है। तो ये पहली बात। परंतु इन चारों के उदाहरण हमारे पुस्तक में लिखा है, आप देखेंगे कि ध्रुवा महाराज पहला नया कनिष्ठ भक्त है, परंतु भगवान का दर्शन हो गया, नारद जी की कृपा होगी, वो उत्तम भक्ति में आ गया। गजेंद्र के ऊपर भगवान ने कृपा की, सनक आदि ऋषियों का संग सुखदेव गोस्वामी से हुआ, और जो सनक आदि ऋषि और सनक आदि ऋषियों को तो साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, और सूत गोस्वामी उनका संग जो है और उनको भगवान का दर्शन हुआ। तो इन सब के ऊपर भगवान या भगवान के भक्तों की जब कृपा हुई है तो फिर ये उत्तम भक्ति में प्रवेश कर सके हैं। तो चारों का उदाहरण आप सबको मालूम है, आरत जो है गजेंद्र है, अर्थार्थी ध्रुव महाराज है, जिज्ञासु सनकादि ऋषि हैं, और ज्ञानी चार कुमार हैं। इन चारों का उदाहरण में चारों के ऊपर भगवान या भगवान के भक्तों की कृपा हुई और ये शुद्ध पवित्र उत्तम भक्ति में प्रवेश कर सके। अब श्रील प्रभुपाद ने हमारे पुस्तक में लिखा है, आप देखेंगे, श्रील प्रभुपाद कहते जब तक किसी के पास सुकृति नहीं होगी तब तक वो भक्ति में नहीं आ सकता। ये जो चार प्रकार के सुकृति हैं, 7-16 में, 7-16 श्लोक में, उसके अंदर उनकी सुकृति का स्तर एक से दूसरा ऊपर ऊपर है। और ये कौन किस प्रकार की सुकृति है, प्रभुपाद लिखते हैं, ये कर्मकांड की सुकृति नहीं है, ये पुण्य कर्म की सुकृति नहीं है, कर्मकांड की नहीं है, क्योंकि ऐसी सुकृति भक्ति के लिए नहीं है। ये तो भक्ति की सुकृति है, क्योंकि वो तो भौतिक है सुकृतियां, कर्मकांड की सुकृति भौतिक है, पुण्य की सुकृति, दान की सुकृति भौतिक है। जो सुकृति भक्ति की होगी वो आध्यात्मिक होगी, वो स्वतंत्र होगी, वो किसी भौतिक चीज से उत्पन्न नहीं होती है, भक्ति केवल भक्ति से ही उत्पन्न होती है। इसलिए जो पुण्य इन चारों का कहा गया है वो भक्ति जनक या भक्ति से पैदा होने वाली, भक्ति से उत्तम होने वाली सुकृति है, जो उन्होंने जाने अनजाने में की है, अज्ञात सुकृति है या ज्ञात सुकृति है, उसके कारण उनका कृष्ण में आकर्षण जागृत हो गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इन चारों में ज्ञानी को सबसे महान कहा गया है, क्योंकि वो कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता और उसका केवल एक ही मुख्य सिद्धांत है, वो कृष्ण में आकर्षित है, कृष्ण से प्रेम करना चाहता है, वो कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानना चाहता है। और अन्य तीनों को भी उदार कहा है क्योंकि वो कृष्ण के पास आए हैं, परंतु जो ज्ञानी है वो विशेष है, वो भगवान को अति प्रिय है। परंतु ये ज्ञानी भी बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञानी वासुदेव को शरण लेता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब ये हम हमारे पुस्तक के ऑलमोस्ट 3 पेज का आपको सारांश बता चुके, अब ये क्यों नहीं है अधिकारी, तो उसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं ये तीन जो सुकृत हैं, कौन से वाले, आर्तो अर्थार्थी, ये तो सीधा ही शरीर के स्तर पे है, और जो जिज्ञासु है वो भी भौतिक स्तर पे है। इसलिए ये तीन सुकृत जो हैं ये सकाम भक्त हैं, ये कर्म मिश्र भक्त हैं, और ये शरीर के स्तर पे हैं। जो चौथा ज्ञानी है वो निष्काम भक्त है, वो ज्ञान मिश्र भक्त है, वो फिर भी आध्यात्मिक स्तर पे है। शुद्ध भक्ति जो भौतिक स्तर पे है उनके लिए नहीं है, वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो व्यक्ति शारीरिक स्तर से अपने को शरीर मानने के स्तर से जब मुक्त होता है तब वो शुद्ध भक्ति करने का अधिकारी होता है, नंबर एक। नंबर दो, भक्ति से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक भौतिक भोग की भावनाएं शरीर के स्तर पे रहेंगी। और तीसरा, और भौतिक प्रकृति का प्रभाव है, उसके दो कारण है, एक है भोग की इच्छा और दूसरी है ब्रह्म में लीन होने की इच्छा। परंतु ये सब भौतिक है, चौथी केवल जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो शुद्ध भक्ति भगवान की कर सकते हैं। तो हमारे पुस्तक में आगे श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ये दो चीजें जब तक होंगी तब तक भक्ति नहीं शुरू हो गई। एक का नाम है भुक्ति, एक का नाम है मुक्ति। भुक्ति का मतलब है इंद्रियों का भोग, और मुक्ति का मतलब है ब्रह्म में लीन होना, ज्ञानियों का लक्षण। भुक्ति मुक्ति स्पर्हा यावत पिशाची हृदय वृते, ये दोनों पिशाची भूत प्रेत हैं, जब तक हृदय में रहते हैं तावत भक्ति सुखा सुखस्यात्र, तब तक भक्ति का जो सुख है, जो तीन प्रकार की हम सुख का वर्णन करके आए हैं भक्ति के गुणों में, शुभदा में तीन प्रकार का सुख है, भौतिक सुख, ब्रह्मलीन का सुख और भक्ति का सुख, तो वो भक्ति का सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा हृदय में है। कथम अभ्य उद्या भवे, तो भक्ति कैसे उसके हृदय में उत्पन्न होगी। तो ये दो शब्द याद रखें, भुक्ति मुक्ति पिशाची, ये जब तक हृदय में है तब तक भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। अब इन दो चीजों को कि ये नहीं चाहिए, विशेष रूप से प्रभुपाद ने कहा इस दुनिया में सारे लोग बड़े होना चाहता है, एक लोग छोटे से बड़ा होना चाहता है, दूसरा बड़े से बड़ा और तीसरा बड़े से बड़ा, एक मैं भाई प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, तो अंत तो गत्वा वो कहते हैं हम भगवान में मिलके एक होना चाहते हैं। तो ये भी भौतिक बड़े होने की होड़ है, इसलिए मुक्ति भी भौतिक स्तर का, ब्रह्म में लीन होना भी उस स्तर का है, इसलिए भुक्ति और मुक्ति दोनों। और हमारे प्रभुपाद जी ने अंतिम इस अध्याय के अंतिम में सात उदाहरण दिए हैं जहां इन दो चीजों को भक्त कभी नहीं चाहते हैं। पहला उदाहरण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, न धनम न जन्म। दूसरा उदाहरण बिल्वमंगल ठाकुर का है, जो कहते हैं भगवान आपकी भक्ति करता हूं तो मुक्ति मेरे दरवाजे पे हाथ खड़े जोड़ के खड़ी होती है, मेरी सेवा के लिए, मुझे नहीं चाहिए। और फिर कपिल देव का है, देवहूति माता को 3:25-36, जिसमें भी शुद्ध भक्ति वालों को कोई भी मुक्ति की आशा नहीं है। फिर स्वयं रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्त मुक्ति में इच्छा नहीं रखता है। फिर उद्धव कृष्ण को कहते हैं, ये तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक है, जो भगवान के सुंदर रूप में सुख लेता है वो मुक्ति के सुख को तुच्छ समझ कर देखता भी नहीं है। फिर कपिल देव का तीसरे 25 का 34 है और ध्रुव महाराज 4, 9, 10 में कहते हैं। ये 7 आपके हमारे पुस्तक में उदाहरण है और यहाँ हमारा ये तीसरा अध्याय पूर्णाहुति पे पहुँचता है। और आपके पास अगर स्लाइड हैं तो उसमें आप ये देखिए कि तीसरे अध्याय का सारांश ये है। नंबर 1, शुद्ध वैदी या उत्तम वैदी भक्ति के शुभ आरंभ के लिए जो गुण चाहिए, जो अधिकार चाहिए, वो है 2 चीजें। एक कृष्ण कथा के लिए रुचि उत्पन्न हुई है और दूसरा भक्त की कृपा, ये है अधिकार। दूसरा वो गुण जिसमें हम वैदी उत्तम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वो निर्भर है हमारा शास्त्र का ज्ञान और श्रद्धा कितनी परिपक्व है। ये है 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्त की। भक्त का आधार है शास्त्र के ऊपर, शास्त्र के ज्ञान और उसके विश्वास के ऊपर। तो भक्ति वैदी साधन भक्ति में प्रगति के लिए जो गुण आवश्यक है वो है शास्त्र के ज्ञान में श्रद्धा में परिपक्वता। और तीसरा भक्ति के साधन, उत्तम वैदी साधन भक्ति के साधना करने में जो मुख्य गुण चाहिए वो चाहिए भुक्ति मुक्ति से, शरीर के स्तर से ऊपर उठना। भुक्ति भौतिक शरीर के स्तर से ऊपर उठना, उसका मतलब भुक्ति मुक्ति से दूर होना, भुक्ति मुक्ति को त्याग देना। यह हमारा तीसरा अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचता है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
हरे कृष्णा प्रभुजी, दरण प्रणाम प्रभुजी।
हाँ जी, बोलिए बोलिए।
हाँ प्रभुजी, जो आपने बताया कि चतुर्विद्या भजन्ते माम जना शुक्र को अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु कार्तिक ज्ञानी च भरत ऋषभ, 6.16 भगवत गीता, तो इसमें आर्थ अधार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, तो चारों को कौन? आर्थ में तो आपने गजेंद्र बताया, अथार्थी में ध्रुव, और प्रभु जी ज्ञानी में 4 कुमार, जिज्ञासु में कौन आएंगे?
सूत गोस्वामी, सनक आदि ऋषि।
सनक आदि ऋषि,
हाँ, जो सूत गोस्वामी से भागवत सुन रहे हैं।
ठीक, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, पिशाचिनी क्या है? जैसे
ये जो डायन पिशाच कहते हैं, डायन को डायन
नहीं, वो तो प्रभु जी वो डायन मतलब जैसे मुक्ति तो भोगना हो गया, मुक्ति हमें मतलब कि इस जग से जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तो पिशाचिनी क्या काम करती है प्रभु जी?
पिशाचिनी का मतलब है कि जब तक हमारी दिल में ये इच्छा है कि मैं स्वर्ग में सुख भोगूंगा या ब्रह्म में लीन होके मुक्त हो जाऊंगा, तो ये दोनों हमारे हृदय में भूतनियां बैठी हैं, वो भक्ति को अंदर नहीं आने देंगी।
जी धन्यवाद।
तो भुक्ति और मुक्ति दोनों भूतनियां हैं, वो भक्ति को हृदय में आने नहीं देती।
जी हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। इसमें पर्पट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा हैज एक्सप्लेन इन द गीता कि आउट ऑफ 4 नियोफाइट्स जो वाइज मैन है मतलब जो ज्ञानी है, ही इज अटैच्ड टू कृष्णा एंड कुछ वो एक्सचेंज नहीं चाहिए उसको मटेरियल। तो प्रभु जी इसमें तो ये वाइज मैन जो या जो ज्ञानी है इसमें तो ये, इसमें और डिवोटी में क्या फर्क हुआ? इसमें तो सारे डिवोटी,
ये ज्ञान के, ये ज्ञान मिश्रित भक्त है, ये बिल्कुल शुद्ध भक्त नहीं है। ज्ञान, इसमें ज्ञान पड़ा है ना अभी तक, ये ज्ञान ये वो ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, वो ब्रह्म में लीन होने वाला नहीं है, परंतु अभी तक इसको बहुत जन्म लगेंगे। लिखा है इस श्लोक के बाद लिखा है बहुनाम जन्म ना मनते, यहाँ नहीं, भगवत गीता के श्लोक इसके बाद जो श्लोक आएगा वहां लिखा है उसको बहुत जन्म लगेगा। तो वो भी ज्ञान मिश्रित भक्ति है, वो भी ज्यादा से ज्यादा शांत भाव को प्राप्त कर सकता है, बस उससे ऊपर नहीं जा सकता।
ओके तो प्रभु जी, आप मतलब वैसे उसमें कोई ना तो मटेरियल बेनिफिट्स है, वो कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी भी मान रहा है और वो उसके लिए अट्रैक्शन भी है, लव भी है, फिर भी प्रभु जी वो
अब मैं क्या कर सकता हूँ। रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी कहते हैं वो शुद्ध भक्त की वैदिक शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी वो ज्ञान उसके अंदर थोड़ा ज्ञान का लेश है और ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, भक्ति है उसमें, भक्ति तो सबके पास होती है तभी तो फल मिलता है, परंतु शुद्ध नहीं है, उत्तम नहीं है अभी तक, उत्तम की बाउंड्री के किनारे पे है अभी, उत्तम की बाउंड्री में एंटर नहीं हुआ है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये ज्ञानी और डिवोटी का ज्ञान थोड़ा डिफरेंस में नहीं है, जैसे कि वो दार्शनिक, ऐसा कोई तो चेंज नहीं है प्रभु जी?
देखो, जो भक्त के पास ज्ञान है वो कृष्ण की भक्ति का ज्ञान है
जी।
उसको कहते हैं संबंध ज्ञान, और ये ज्ञान है शास्त्र का, कृष्ण की भक्ति का ज्ञान वो इससे अलग है, उसको भी ज्ञान है
जी।
परंतु वो ज्ञान जिसका लक्ष्य जो है तर्क वितर्क नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा है
जी।
ज्ञान उपवास भी होता है।
हरे कृष्ण गुरु जी,
धन्यवाद।
और जो ज्ञानी जो चार कुमार है,
हाँ जी, चार कुमार, चार कुमार है ये, जब भगवान विष्णु की कृपा हुई उनके चरणों की तुलसी और जो मकरंद है उसकी सुगंध इनकी नासिका में गई, तब इनके हृदय में भक्ति का उदय हुआ।
उसके पहले ज्ञान मिश्रित थे, वो ज्ञान मिश्रित भक्ति कर रहे थे
बिल्कुल, ये ज्ञानी के स्तर के ऊपर थे, है भगवान के अवतार है पर तो है उस स्तर में, और शांत प्रकार के भक्त है, ये शांत भक्ति के उदाहरण है। और चेतना महाप्रभु ने शांत भक्ति को भक्ति में लिया नहीं
जी। जी तो अच्छा, फिर बाद में तुलसी दल और उनके कृपा से फिर ये दास भाव में आ गए?
नहीं नहीं, शांत में अभी तक ही उसको, वो उनकी कैटेगरी शांत की है, चार कुमार शांत भाव के भक्त है
जी। जी
हाँ जी,
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय पूर्ण आहुति पे पहुंचा। अब इसके बाद जो चौथा अध्याय है वो असल में दूसरा ही लहर है भक्ति रसामृत सिंधु का, परंतु उसमें जो मुख्य नाम दिया है प्रभुपाद जी ने उस चौथे अध्याय का, वो है वैदी उत्तम साधन भक्ति, सब प्रकार की मुक्ति से ऊपर है, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो इस अध्याय में चार पांच पेज जो है वो केवल शास्त्रों से उदाहरण उद्धृत किया है कि ये सारे भक्त कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। जैसे कोर्ट में अपने केस को जीतने के लिए बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं कानून के, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उत्तम वैदी भक्ति को मुक्ति से महान दिखाने के लिए, बढ़कर दिखाने के लिए कोई 20-25 से ज्यादा शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं प्रमाण के रूप में। और इस अध्याय के अंत में एक बात समझाई गई है कि सब प्रकार के वैदी साधन भक्ति के अंतर्गत, वैदी साधन भक्ति के अंदर कर जो कृष्ण की भक्ति है और जो वृंदावन के कृष्ण की भक्ति है वो सर्वोपरि है। तो ऐसे इस अध्याय में केवल पढ़ने की बातें हैं, फिर भी हम एक नजर इन सब उदाहरणों को पढ़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, केवल कुछ श्लोक पढ़ते जाना है और क्या लिखा है उसको देखते जाना है, ठीक है। आप श्लोक इसके अंदर दिखे हुए हैं तो आप उसको पढ़ते जाइएगा, मैं तो इसका अर्थ बताता जाऊंगा साथ साथ में। तो चौथे अध्याय में पृथु महाराज का पहला उदाहरण है, 4:20-24 में वो ब्रह्मलीन की मुक्ति नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो भगवान की कथा कीर्तन कैसे सुनेगा। जो भगवान के भक्तों के मुख से भगवान के चरणों की मधुर मधु जैसी कथाएं आएंगी उनको सुनेगा नहीं, इसलिए नहीं चाहिए मुक्ति। फिर भरत महाराज कहते हैं 5:14-44 में भगवान के चरण कमलों की सेवा श्री कृष्ण की इतनी अच्छी लगी कि भौतिक सारे सुख सुविधाएं त्याग दी और उन्होंने मुक्ति को भी तुच्छ मान लिया। फिर वृत्तासुर की प्रार्थना है 6:11-25 में, वो कहता है कि मुझे न भौतिक सुख चाहिए, न ब्रह्मा जी का पद चाहिए, न मुक्ति चाहिए, मुझे तो भगवान के भक्तों की निरंतर संगति और सेवा चाहिए। और फिर भगवान शंकर चित्रकेतु की महिमा गा रहे हैं 6:17-28 में, शुद्ध भक्त को जिन्होंने भगवान के चरणों का शरण लिया उसको किसी का भय नहीं है, उसके लिए भौतिक जगत और मुक्ति ये सब समान है। और इंद्र फिर शुद्ध भक्त की महिमा गा रहा है 6:18-74 में, भक्त जानते हैं कि हमारा स्वार्थ केवल भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी भक्ति में है, इसलिए वो अन्य सब इच्छाओं को यहां तक के मुक्ति को भी तलांजलि दे देते हैं। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को प्रचार करते हुए 7:25 में कहते हैं, आप भगवान के कथा कीर्तन के श्रवण कीर्तन का सुख लो तो समझ लो को आप पहले से ही सारे भौतिक जो आशीर्वाद है और जो मुक्ति है उससे ऊपर उठ चुके हो। और नरसिंह देव को इंद्र जब सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं तो 7:8-42 में कह रहा है, जो भक्त आपकी प्रेममयी सेवा में है उनके लिए भौतिक वैभव हो या मुक्ति हो उसका कोई महत्व नहीं है, वो पूर्ण रूप से आपकी सेवा में संतुष्ट है और वही वास्तविक सुख को पाते हैं। फिर गजेंद्र की प्रार्थना में है, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के चरणों की सेवा करते हैं और सब इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं वो तो आनंद के समुद्र में मगन रहते हैं, आनंद लेते हैं। फिर 9 स्कंद के 4 अध्याय के 67 श्लोक में भगवान नारायण दुर्वासा ऋषि को कहते हैं, मेरे भक्त केवल मेरी सेवा से संतुष्ट होते हैं और इसलिए वो तो 5 में से 1 भी मुक्ति मुझसे नहीं चाहते। और नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, जिनको आपके चरण कमलों की रज मिल गई है भगवान, उसको तो पूर्ण सिद्धि मिल गई, उसको तो मुक्ति भी मिल गई, उसको क्या चाहिए। और वेद की श्रुति 10 स्कंद के 87 अध्याय के 21 श्लोक में कहती हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में निमग्न है उसको तथाकथित मुक्तियों की कोई इच्छा नहीं है। और कृष्ण उद्धव को 11 स्कंद में कहते हैं, जिन्होंने मेरा शरण ले लिया है उनको और कोई इच्छा नहीं है, वो मैं उनको 4 मुक्तियां देता हूं तो भी नहीं लेते हैं। और जिसकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण में तलीन है उसको मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। और भगवान शंकर देवी को कहते हैं मार्कंडेय ऋषि के विषय में 12 स्कंद में, जिसको पूर्ण विश्वास है और भगवान की भक्ति है उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। पद्म पुराण में दामोदर अष्टक में हम पढ़ते आते हैं, आप सब रोज कार्तिक महीने में पढ़ते हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई और वर न मोक्षम वधिम वा, ये जो श्लोक पढ़ते हैं मैं तो केवल दामोदर आपके सुंदर रूप को देखना चाहता हूं, मुझे प्रेम भक्ति दीजिए जैसे कुबेर के बेटों को दिया। ये दामोदर अष्टक के दो श्लोक है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा, ये दो श्लोक है। और हरियाश्र पंचरात्रा में लिखा है, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपका नित्य सेवक रहूं और कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे। और इसी हरियाशव पंचरात्र में आगे है, प्रहलाद केवल भगवान का नित्य सेवक बनना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। प्रहलाद हनुमान जी का उदाहरण दे रहा है कि हनुमान कैसे भक्त हैं। भाव बंध छिदे तस्यै स्मरयामि न मुक्तये भवम प्रभु अहम दास इति यत्र विपो विलोप्यते। भगवान मेरी भक्ति में जो आपका सेवक का भाव है ये मुक्ति से लुप्त हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। और नारद पंचरात्मा रात्रा में है, जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है उसको कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार की मुक्ति की। और वृत्तासुर कहता है बहुत से मुक्त हैं परंतु शुद्ध भक्त, और वृत्तासुर के विषय में कहा हुआ है कि भगवान का शुद्ध भक्त कोई मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है। मुक्त तो बहुत है लेकिन भक्त दुर्लभ है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहते हैं मैं तो स्त्री हूं क्या समझूंगी आपकी महिमा, बड़े बड़े मुक्त अमल आत्मा नहीं समझ सकते हैं, मुक्त नहीं समझ सकते हैं, परमहंस नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थी। और आत्माराम का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत में, जो पहले से मुक्त हैं जिनमें दिव्य गुण, जो पहले से मुक्त हैं वो भी कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान का भक्त ज्ञानी योगी और कर्मी से महान है। और दूसरा इससे ये सिद्धांत स्थापित होता है कि भगवान का गुण रूप लीलाएं भौतिक नहीं है। यहां तक तो थे सारे, चौथे अध्याय में मुक्ति से भक्ति महान है ये सब जानकारी थी। अब अंतिम जो इस अध्याय का भाग है उसमें लिखा है पांच प्रकार की मुक्तियां होती हैं। इसका शीर्ष है वृंदावन की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। तो पांच प्रकार की मुक्तियों में जो सायुज्य मुक्ति है, ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति है, वो तो भक्त कभी नहीं चाहते, वो भक्तों को नहीं चाहिए। दूसरी जो चार प्रकार की मुक्ति है, सारूप्या सामिप्या सारिष्टि और सालोक्य, वो भी भक्तों को चाहिए नहीं, परंतु वो भक्ति के विरुद्ध नहीं है, परंतु ये चारों मुक्तियां वैकुंठ तक की है। लिखा है प्रभुपाद दे आर नॉट अगेंस्ट डिवोशनल आइडिया, इसका अर्थ है कि वो इतनी उत्तम नहीं है परंतु वो फिर भी भक्ति के अंतर्गत है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं न अति विरुद्धते, जो शब्द रूप गोस्वामी ने लिखा है कि ये अति विरुद्धते, वो भक्ति के अति विरुद्ध नहीं है। इसका अर्थ है थोड़ा सा तो विरुद्ध है ही, क्योंकि भगवान जैसा स्वरूप चाहिए, भगवान जैसा वैभव चाहिए, तो थोड़ी तो भोग की कामना है, कोई सुख की इच्छा है, कुछ ही कुछ वैभव की इच्छा है, भले आध्यात्मिक जगत में हो। इसलिए जो गोलोक वृंदावन का भाव है भक्त के हृदय में, वो तो केवल कृष्ण में आ सकती है, और कृष्ण के मधुर प्रेम को पूर्ण रूप से पाने से पूर्ण संतुष्ट होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी वैकुंठ के भक्त भी कृष्ण के प्रेम से आकर्षण होते हैं और वो गोलोक चले जाते हैं, नारायण के पास रहते हुए भी उनके मन, ये प्रभुपाद ने अपनी तरफ से लिखा है, ये श्री रूप गोस्वामी के पुस्तक में नहीं है। और बड़ा आश्चर्यजनक ये स्टेटमेंट है कि कभी 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 भक्त वैकुंठ से कृष्ण के आकर्षण के कारण नारायण को नमस्कार करके गोलोक में चले जाते हैं। जो ऐसे सारे भगवान के भक्त हैं, चाहे नारायण के हो, चाहे नरसिंह के हो, चाहे राम जी के हो, इनमें जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन में आकर्ष है, कृष्ण में वो सबसे श्रेष्ठ है। उनको वैकुंठ और द्वारका के ऐस वैभव की भी इच्छा नहीं है। ये एक श्लोक है चैतन्य चैतन्यमृत के मध्य लीला से, सिद्धांततस्तव अभेदे अपि श्रीशा कृष्ण स्वरूपयो रसेनोतकृष्यते कृष्ण रूपम एषा रस स्थिति। सिद्धांत में कोई भेद नहीं है, किसके शीर श्री श्री ईश मतलब नारायण, श्री के स्वामी, और कृष्ण में सिद्धांत में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। स्वरूपयो, स्वरूप दोनों का एक है, दोनों ही विष्णु तत्व हैं। परंतु रस और रस उत्कृष्य कृष्ण, कृष्ण में रस ज्यादा है, कृष्ण के रूप में रस ज्यादा है, इसलिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। इन शब्दों के साथ हमारा चौथा अध्याय पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। अब आपने अगर पढ़ा है, आपका कोई प्रश्न है तो चौथे अध्याय के विषय में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम।
हाँ जी,
देखिए प्रभु जी, हम सुनते हैं कि वृत्तासुर तो बहुत पापी था, बहुत अधर्मी था, हैं, तो उसको भगवान प्रति उसको इतना कैसे श्रद्धा हो गया और उनकी भक्ति कैसे हो गई?
मैं समझता हूँ धीरज कृष्ण इसका उत्तर देगा, वो भागवत पढ़ते हैं, लिखा है कि वृत्तासुर पहले कौन था, चित्रकेतु था, जिसके ऊपर नारद जी की कृपा हुई और वो विद्याधर बन गया और भगवान का साक्षात बलराम जी का दर्शन किया, बस एक अहंकार बच गया था थोड़ा, और वो पार्वती के अपमान के कारण वृत्तासुर बना, परंतु उसकी भाव भक्ति पहले से थी, वो पहले भाव भक्ति के स्तर पे था।
समझ गया कि पहले से था इसलिए।
हाँ, वो पहले से भाव भक्ति, जब आप भाव भक्ति पढ़ेंगे तो उसमें एक वृत्तासुर का उदाहरण आएगा कि कभी कभी भाव भक्ति बिना साधन के अचानक किसी के जीवन में इसलिए दिखती है कि पूर्व जन्म में वहां तक पहुंच के किसी छोटे अपराध के कारण वो प्रकट नहीं हो पाई थी, उसका उदाहरण है वृत्तासुर।
थैंक यू जी, थैंक यू।
हाँ जी,
ये इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? अभी आप एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं
भाई, मैं
पहले धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, अभी दो अध्याय
ना, दूसरे एक अध्याय तो पहले, चौथा तीसरा अध्याय तो हमने उसका मेन हिस्सा तो पहले कर लिया था दो घंटे में, वो लास्ट का दो पेज बचे थे, दो तीन पेज नहीं। आपकी तो नौ क्लास है, आपका नौ क्लासों का कैरिकुलम है, वो तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। और अगर आप जैसे मैं पहले से पढ़ा रहा था सब श्लोक और उसका रसास्वादन करना है तो हमको कोई जल्दी जाने का शौक नहीं है। आपका क्या है कि समय है दूसरे
नहीं,
एक और बात फिर आपके एग्जाम आ जाएंगे, जो पहले पढ़ा के छोटे की पुस्तक जो दोनों पूरे हो जाएंगे उनके एग्जाम आएंगे, फिर आप रस
नहीं प्रभु जी, अभी एग्जाम एनओडी का बाद में एग्जाम करेंगे, आप जैसे एग्जाम चल रहे थे
जी।
यस प्रभु जी, आप एनओडी का एग्जाम अभी नहीं होगा, बाद में होगा लास्ट में, आप जैसे चल रहे थे एक एक वार्ड लेके प्लीज करिए कंटिन्यू करिए।
हाँ, क्या कह रहे हैं धीरज जी?
मैं प्रभु ये कह रहा हूँ, जैसे पहले धीरे धीरे चल रहे थे समझ में आ रहा था, अभी इतने तेज चले गए तो पढ़ भी नहीं पास।
नहीं, मैं इसलिए बोला ये पढ़ के आने आपको तीन अध्याय, मैंने बोले पढ़ लो क्यों, अगले अध्याय में वैसे भी सिर्फ उदाहरण है, और
मेरी गलतियों को पढ़ के दिया है, पढ़ के आना चाहिए था।
और हमारे द्वैपायन व्यास क्या कह रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। आप आए नहीं, दवाई नहीं आई, कोई बात नहीं। चलिए, कोरियर वोरियर इतना जरूरी नहीं है, तो ठीक ठाक हूँ कृष्ण कृपा से। बोलिए।
अच्छा प्रभु जी, मैंने इस पुस्तक में पढ़ा था कि भगवान जो है वो वृंदावन बिहारी के जो भक्त है वो बड़े वो अग्रणी है, वाकई
आवाज कट गया, आवाज का कट गया आपका, दोबारा बोलिए। दोबारा बोलिए प्रभु। मैं तो पांचवा अध्याय भी पूरा करने का सोच रहा था।
हरे कृष्ण प्रभु जी,
मैं अभी व्यास जी का प्रश्न पूरा नहीं हुआ, पूरा करिए व्यास जी। द्वैपायन कोई समझाओ तो द्वैपायन जी का वो प्रश्न मेरे को बता दीजिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अर्थ में लिखा है कि
फिर आप म्यूट हो गए,
और जो इसमें था जो द्वारका के राजा के प्रति भक्त है वो उतने प्रभावशाली नहीं है, क्या मतलब
होगा? मतलब ये है इसका सीधा मतलब इसका ये है कि राग अनुगा भक्त केवल कृष्ण के गोलोक धाम के वृंदावन के हैं, वो है राग अनुगा
जी।
और बाकी द्वारका के हों या वैकुंठ के हों या मथुरा के हों, वो वैदी भक्ति वाले हैं, उनमें रस इतना नहीं है। वो रस की परिपूर्णता वृंदावन के कृष्ण में है, वो रसराज कृष्ण है। जो इस पुस्तक का पहला जो मंगलाचरण का श्लोक है, अखिल रस मूर्ति कृष्ण, वो उसी को आपको ये सब किताब पढ़ते हुए वो मंगलाचरण का श्लोक याद रखना चाहिए कि अखिल रस मूर्ति कृष्ण जो है वो ही हमारा लक्ष्य है इस पूरे पुस्तक का। और अनुकूल ये न कृष्ण अनुसूल, कृष्ण में सब कुछ आता है, फिर भी ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है कोई अंतर नहीं है कृष्ण में, अंतर नहीं है। कृष्ण द्वारका भी वही है, मथुरा का भी वही है, वृंदावन का भी वही है, वैकुंठ में नारायण है वही भी कृष्ण, वही विष्णु तत्व है। भेद सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, परंतु रस में अंतर है, रस और भाव में अंतर है।
लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा उन्होंने, स्पष्ट लिखा प्रभुपाद जी ने कि जो भगवान की लीला से भक्त भक्त में सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान की लीला से आकृष्ट है वो सर्वश्रेष्ठ है, न कि जो द्वारका के राजा के प्रति आकृष्ट है।
उसमें क्या है, दो शब्द आप यहाँ जब ये द्वारका और वृंदावन की बात करें तो दो शब्द याद रखें, एक का नाम है ऐश्वर्य, एक का नाम है माधुर्य। तो द्वारका में ऐश्वर्य ज्यादा है, माधुर्य कम है, और वृंदावन में माधुर्य ज्यादा है, ऐश्वर्य संकोचित है। बस ये अंतर ये है, माधुर्य वृंदावन में पूर्ण है,
माधुर्य ऐश्वर्य
है। हाँ, माधुर्य में ऐश्वर्य संकुचित है, माधुर्य विकसित है वृंदावन में, और द्वारका में माधुर्य संकुचित है, ऐश्वर्य विकसित है। वृंदावन माधुर्य धाम है, द्वारका ऐश्वर्य धाम है, मायापुर औदार्य धाम है, वो भगवान उधार चेतन महाप्रभु है।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी।
हाँ जी शीतल बोलो।
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी जहाँ पे ये आत्माराम वाला वर्स है ना, वहाँ पे प्रभुपाद क्या बोलते हैं पोपट में कि इस कि जो लिबरेटेड सोल्स है, जो आत्माराम है, वो मटेरियली अटैच नहीं है, बट फिर वो सबसे डिटैच है, मतलब पर फिर भी वो कृष्णा की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है ना। दे आर अट्रैक्टेड बाई द डिजायर टू हियर एंड अंडरस्टैंड द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो उसके बाद प्रभुपाद प्रात क्या लाइन लिखते हैं, वी मे देयरफॉर कंक्लूड दैट द ग्लोरीज एंड पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर नॉट मटेरियल। प्रभु जी इससे हम कंक्लूड कैसे कर सकते, ये तो ऑलरेडी है ना कि कृष्णा और कृष्णा से रिलेटेड, कृष्णा कृष्णा के पास्ट टाइम।
समझी नहीं ना आप, ये पहली लाइन को इससे मिलाओगे तो समझ में आएगा। जो पहले से लिबरेटेड है, इसका मतलब जो पहले भौतिक स्तर से ऊपर है, वो अगर कृष्ण की लीला में आकर्षित है, इसका मतलब कृष्ण की लीला भौतिक तो है नहीं, भौतिक होती तो उन्होंने छोड़ दी थी पहले ही, वो भौतिक नहीं है तब उसमें आकर्षित है ना, क्योंकि वो मुक्त है तो भौतिक तो पहले ही छोड़ के आ गए। अगर ये भौतिक होती तो उसमें तो रुचि नहीं होती, इसका मतलब आध्यात्मिक है। और एक श्लोक और भी आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उसमें प्रभुपाद ने लिखा है ब्रह्म भूत के स्तर के बाद असली भक्ति शुरू होती है। अगर इस पढ़ेंगे इस सारे अध्याय में, तो प्रभुपाद ने भगवत गीता का वो श्लोक लिखा है ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। पहले ब्रह्म भूत के स्तर पे पहुंचोगे तब आप शुद्ध भक्ति, जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करोगे तब शुद्ध भक्ति कर सकोगे। ये बीच में है, आप पढ़ना, आपको मिलेगा ये।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, एक अध्याय दो में ना एक क्वेश्चन डाला हुआ है, ये सभी न्यायमुख सिद्धांतों में सबसे आधारभूत कौन सा है प्रभु जी, मुझे समझ नहीं आया
क्या है।
नियामक सिद्धांतों में
किस अध्याय पे लिए, क्या 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 प्रश्न?
दूसरा अध्याय में है नियामक।
व्हाट इज द मोस्ट बेसिक ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स?
व्हाट इज द बेस्ट?
What is the most basic of all regulative principles?
What is the most basic regulative principles? Sir, वहाँ कौन सा अध्याय है ये?
दूसरा अध्याय प्रभु।
दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था साधन भक्ति और वैदिक साधन भक्ति का मुख्य अंग क्या था? मन सदा कैसे भी ये न केन उपाय न मन कृष्ण निवेश है, ये शब्द था, याद है किसी को? याद है आपने पहले ये कहा था एक शब्द, एक ही मुख्य है क्या, किसी भी प्रकार से हमारा मन कृष्ण में लगे। और इसके साथ दूसरा श्लोक भी था सवई मन कृष्ण पदार बिंदे, ये भी था। ये था साधन भक्ति के लिए, और वैदिक साधन भक्ति के लिए एक ही नेम कौन सा था? सदा विष्णु को याद करो, कभी नहीं भूलो, सारे नेम और विधि निषेध इसके सेवक हैं। ये दो हमारे दूसरे अध्याय में मुख्य सार हैं, याद है किसको? सर्वत्र सार ये है, ये तो एक है वैदिक भक्ति का सार, लेकिन इससे पहले है साधन भक्ति का सार, ये साधन भक्ति का सार है, इससे और आगे होगा। तस्मात के ये न केन उपाय न, किसी प्रकार से मन कृष्ण में लगे, नहीं नहीं ये तो हो गया, हाँ नहीं ये तो माजन ये न गत सपन था, ये दूसरा है और आगे। ये इससे पहले दो प्रकार की भक्ति से पहले होना चाहिए, हाँ ये है कृते नहीं कृते साधे, ये तो उसकी परिभाषा है साधन भक्ति की। और ये है तर्कोत प्रश्न, ये भी है कि महाजनों के तर्क वितर्क नहीं करना, के शुद्ध भक्ति का निर्देश और संग पूर्व जनक का, ये तो अध्याय बदल गया, ये दूसरा, ये अध्याय दूसरा शुरू हो गया, ये तीसरा अध्याय शुरू हो गया। एक और श्लोक था थोड़ा भक्ति प्रेम भक्ति, वहाँ नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम नहीं इसमें नहीं है, और दूसरे विभाग में हमारा था, उसमें ये विशेष बात थी कि मन कृष्ण में लगना चाहिए। तस्मात् केन उपायेन मन कृष्ण, ये है साधन भक्ति का सार, ये आपका जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो ये है। उदाहरण अम्बरीश महाराज, सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो, ठीक है।
प्रभु मतलब रिमेम्बरिंग कृष्णा ऑल द टाइम इज द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल, राइट?
देखो आ, 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 देखो दो दो जगहों पे दो दो सार है, एक साधन भक्ति का सार है, एक वैदिक साधन भक्ति का सार है। और ये है साधन भक्ति का सार, तस्माद केन उपायेन मन कृष्ण निवेश्यते, किसी प्रकार से मन कृष्ण में लगना चाहिए, विशेष रूप से अनुकूल भाव से लगना चाहिए, जैसे अम्बरीश महाराज ने कहा। और वैदिक साधन भक्ति का सार है सदा विष्णु का स्मरण हो, कभी नहीं भूले, दोनों भी अगर उस वहां लिखा हो साधन भक्ति का तो पहला वाला लिखना, वैदिक साधन का तो दूसरा वाला। सो और किसी का कोई प्रश्न है?
अरे अरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी हाँ जी
प्रभु जी, एक तो जैसे इसी अध्याय में बताया कि भक्त कृष्ण के मूल रूप वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है।
नहीं ऐसा नहीं है, जो सबसे उत्तम भक्त वो है जो वृंदावन बिहारी के प्रति आकर्षित होता है।
जी जी। और एक क्लास में बताया कि अपना जब ध्यान है वो राधा श्याम सुंदर के ऊपर केंद्रित करना है, इसमें कोई डिफरेंस?
तो राधा श्याम सुंदर तो वृंदावन का राधा, राधा है तो वृंदावन से बाहर तो राधा है नहीं।
जी जी।
तो वो वृंदावन ही हो गया। एक और बात लिखी है पुस्तक में कि भक्त का एक स्थाई इष्ट होता है, जैसे हनुमान जी का राम जी है। अब हनुमान जी जानते हैं कि नारायण में और राम में कोई अंतर नहीं है, फिर भी वो राम जी के ही भक्त रहेंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में भी कुछ ऐसे भक्त थे जो राम के भक्त थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कितना कहा कृष्ण के लिए, बोला नहीं छोड़ सकते, प्राण छोड़ सकते हैं राम को नहीं छोड़ सकते। तो एक मुरारी गुप्ता था और एक जीव गोस्वामी का पिता और रूप गोस्वामी का भाई था, वो भी राम भक्त था। तो ऐसा है कि किसी की भक्ति मानो के राम के प्रति है तो वो शुद्ध है, वो परम है उसके लिए, उसमें कोई भेद नहीं है। परंतु जो गौरिया वैष्णव का सिद्धांत है उसके आधार पे ये लिखा गया है, तो उसमें तो सिर्फ राधा कृष्ण का ब्रज का प्रेम वो ही सर्वश्रेष्ठ है, जो रसराज कृष्ण वृंदावन बिहारी कृष्ण वो ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति के साधनों में, उसकी भक्ति परम है। परंतु वो भक्ति असल में वो भक्ति है ही राग अनोगा, लेकिन वो आएगा जब उसके ऊपर आप चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।
हरे कृष्ण। यह दोनों अध्याय पढ़ लीजिएगा, एक अध्याय का तो मैं सारा सिर्फ बताया है कि चार जो ये शुद्ध भक्ति में नहीं आते हैं, भक्तों का संग हो तो आ सकते हैं, परंतु ये कनिष्ठ भक्त हैं जो भक्ति के दरवाजे पे खड़े हैं, क्योंकि भगवान के पास आए हैं और भक्ति जनक सुकृति है इसलिए आए हैं, नहीं तो नास्तिक भी हो सकते थे, देवता के पास भी जा सकते थे। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए, कोई चीज नहीं आए समझ में आए तो लिख दीजिएगा और अगली बार कल मेरे से पूछ लीजिएगा इन दो अध्यायों के विषय में जो हमने पूरे किए, तीन और चार। कल हम पांचवा अध्याय में शुरू करेंगे जिसमें है भक्ति परम पवित्र है। इसका मतलब कोई चीज, अब इतने सारी बातें बताने के बाद तीन चार बातें मुख्य उस अध्याय में है, वो अध्याय कल पूरा करेंगे कि भक्ति जन्म के ऊपर निर्धारित नहीं है, भक्ति के भक्ति प्राश्चित के भक्ति के लिए नहीं चाहिए, ऐसे दो चार उसमें विशेष बातें हैं उनका कल वर्णन करेंगे। तो कल हमारा पांचवा अध्याय हम करेंगे। आपको मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे लगेंगे, तो तीसरा और चौथा अध्याय एक बार पढ़ लीजिए, उसके प्रश्न क्या हैं वो भी पढ़ लीजिए और कल उसमें जो नहीं समझ में आए कि पूछ लीजिएगा। तो कल आप इसका पढ़िए, कोई समझ में नहीं आए तो प्रश्न लिख लीजिएगा और पहले वो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पांचवा अध्याय भी आपको कल सुबह टाइम मिले तो आधा घंटा पढ़ लेना। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी, आप झलक देखा आज थोड़ी सी, तो लोग परेशान हो गए।
नहीं करने को तो पूरा करने में तो कोई देर नहीं लगती है।
नहीं 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 चाहते प्रभु जी, आप नीचे आराम से रस साथ भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। एग्जाम पीछे कर दिए, अभी एनओडी एग्जाम नहीं होगा, दो महीने के बाद करेंगे, लास्ट में करेंगे, अभी जो भी होगा वो